ओम शांति। आइए आज आपको मैं माइंड मेमोरी और माइंडफुलनेस के बारे में बताने जा रहा हूं। माइंडफुलनेस और मेमोरी में क्या अंतर है? मेमोरी अर्थात स्मृति, नॉर्मल स्मृति, डे बाय डे एक्टिविटी, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ भी पढ़ा उसको याद कर लिया, ये आम स्मृति हो गई। लेकिन माइंडफुलनेस जिसके बारे में गीता में 18वें अध्याय में अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात मेरे मोह नष्ट हो गए और मुझे सारी स्मृतियां प्राप्त हो गई, तो उस स्मृति को हम माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस में 5 प्रकार की स्मृतियां हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। पहली स्मृति कि मैं एक एक्टर हूँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं अपना एक्ट कर रहे हूँ, जो भी मुझे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है उसको मैं सही तरीके से निभा रहा हूँ, इस कॉन्शियसनेस के साथ एक्ट करना, इसकी स्मृति हमेशा दिमाग में रखना, इसी को माइंडफुलनेस कहा जाता है। तो पहली स्मृति हुई एक्टर का। दूसरा कि मैं एक एनर्जी हूँ, ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, सेल्फ जिसको हम कहते हैं, और ये ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, यानी मैं आत्मा एक अविनाशी सत्ता हूँ, अविनाशी ऊर्जा हूँ, जो एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, अभी इस शरीर में हूँ, इस स्वरूप में हूँ, इसकी स्मृति ये दिमाग में हमेशा रहे, तो इसको भी माइंडफुलनेस कहा जाता है। तीसरी स्मृति माइंडफुलनेस में होती है ऑब्जर्वर, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं जो भी देख रहा हूँ सिर्फ देख रहा हूँ, एक विटनेस कॉन्शियसनेस का होना बहुत जरूरी है। विटनेस कॉन्शियसनेस का मतलब कि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे हम फिल्म देखते हैं उस तरह से हम देख रहे हैं, इसी को ऋषि मुनियों ने कहा कि जगत मिथ्या है, स्वप्न मात्र है, स्वप्न की तरह सब चीज चल रहा है, सपने में आप देखते रहते वैसे ही देख रहे हैं। तो वे विटनेस कॉन्शियसनेस, एक ऑब्जर्वर के एटीट्यूड से देखना, ये माइंडफुलनेस है, क्योंकि इसमें ड्रामा की स्मृति रहता है, जो भी हो रहा है विधि के विधान के अनुसार हो रहा है, जो होना है वो होगा, उसको हम रोक नहीं सकते। चौथी स्मृति होती है कॉन्शियसनेस ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है संकल्प, मेरे मन के अंदर जो भी इमोशंस है, जो भी थॉट्स है, उसकी स्मृति, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी भावनाएं क्या है, इसकी अवेयरनेस। ऐसा नहीं कि मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही है, कहाँ मेरा मन चला जा रहा है, मेरी भावनाएं कहाँ चली जा रही है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा नहीं। इंटेंशन का मतलब होता है संकल्प, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी भावनाएं हैं, उसको मैं ठीक तरह से जान रहा हूं, तो इसकी अवेयरनेस, इसका कॉन्शियसनेस, ये हमेशा दिमाग में रहे, ये बात, ये है हमारा माइंडफुलनेस। और पांचवा है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी हम आत्मा भाई भाई हैं, वी आर ऑल ब्रदरली सोल्स, ऑल चिल्ड्रेन ऑफ वन गॉड वन फादर, एक परमपिता परमात्मा की संतान, हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं। तो ये 5 स्मृतियां सदा दिमाग में रहे, इसको माइंडफुलनेस कहा जाता है। तो मेमोरी और माइंडफुलनेस दोनों में अंतर है। मेमोरी का मतलब कोई चीज को जस्ट याद रखना हुआ, हमने ऐसा किया उस दिन, ऐसा किया उस दिन, वो पढ़ा तो वो याद रह गया, वो मेमोरी है। लेकिन माइंडफुलनेस का मतलब कि दिमाग में ये 5 चीज हमेशा घूमती रहनी चाहिए। इसको भी आप याद रख सकते हैं, 5 चीजों को 5 वोवेल्स से आप एसोसिएट करके, ए ई आई ओ यू, ए मीन्स एक्टर, ई मीन्स एनर्जी, आई एम एनर्जी, आई मीन्स इंटेंशन, संकल्प के बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ, ओ मीन्स ऑब्जर्वर, मैं इसे देख रहा हूँ, यू मीन्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो ये 5 स्मृतियां हमें पूरी पूरी माइंडफुलनेस की तरफ लेके जाती है। माइंडफुलनेस मतलब माइंड हमारा फुल है, इस 5 स्मृति से हमारा मन इसी पांचों समिति में घूम रहा है और ये ओरिजिनलिटी है। इसी को परमात्मा ने रियलाइज कराने के लिए अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। अब अर्जुन को भी जो गीता का ज्ञान दिया गया वो कह क्यों दिया गया, क्योंकि अर्जुन के अंदर डाउट्स है, उसका मन अटैच था, उसके अंदर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट थे, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट थे उसके मन में, और वो कॉन्फ्लिक्ट इस पांच स्मृतियों से उसको दूर रखा। इसलिए परमात्मा ने उसके अंदर के जितने संदेह थे उसको दूर किया। इसलिए अर्जुन ने कहा गतो संदेह, संदेह सारे दूर हो गए और नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गए और स्मृति लब्धा, पूरी मेमोरी मुझे मिल गए। तो मेमोरी मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमें, हम सबको ये पांच चीजों का अवेयरनेस, कंसियसनेस सदा रहे। यही परमात्मा का ही इशारा है, परमात्मा का भी लक्ष्य ही यही है, डायरेक्शन भी यही है कि हर एक व्यक्ति इस पांच चीजों के बारे में हमेशा अवगत रहे, याद नहीं दिलाना पड़े उसको, याद रहे और इस स्मृति के आधार पर उसका कर्म हो। क्योंकि जब तक अर्जुन को यह स्मृति नहीं आई तब तक वो तीर नहीं चलाया, उसके सामने रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे थे, सभी उसके मामा ताया काका सभी दिखाई दे रहे थे, उनके ऊपर वो बाण नहीं चला रहा था। तो मेमोरी इम्प्रूवमेंट्स के लिए, माइंडफुलनेस के लिए हमें कुछ चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज को बताने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को बताने के लिए रूपक अलंकार का यूज किया जाता है, जिसको मेटाफोर कहते हैं। कोई भी चीज जो दिखाई देती है आपको, वही चीज आपके स्मृति में टिकती है, जो चीज दिखाई नहीं देती है वो स्मृति में नहीं टिकती है। अगर आपको ऐसा, सभी को ऐसा बताया जाए आत्मा होती है, आत्मा की पांच ज्ञान इंद्रियां होती है, पांच कर्मेंद्रियां होती है, आत्मा का मन कर्मेंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के बीच रहता है, उससे प्रभावित होता है, उसके पीछे भागता रहता है, जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक हम अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर सकते, एकाग्रता नहीं होगी, ये सारी फिलॉसफी है। इस चीजों को एक आम इंसान नहीं समझ पाएगा। इसी चीज को समझाने के लिए गीता में रूपक अलंकार का यूज किया गया। अर्जुन अब आत्मा है, अब आत्मा को एक पर्सन के रूप में दिखाया गया, आत्मा को पर्सनिफाई किया गया, इसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। आत्मा को एक अर्जुन के पुरुष के रूप में दिखाया गया और आत्मा अर्थात अर्जुन, क्योंकि आत्मा ग्रहण करती है, शरीर ग्रहण नहीं करता है। एक डेड बॉडी है, वो भोजन भी ग्रहण नहीं कर सकता, पानी भी ग्रहण नहीं कर सकता, उसके पास अर्जुन की कैपेबिलिटी नहीं है, सिर्फ आत्मा में ही लेने की कैपेबिलिटी है। इसलिए आत्मा को अर्जन करने वाला अर्जुन कहा गया, यानी आत्मा जो दिखाई नहीं देती उसको एक पुरुष के रूप में दिखाया गया, पर्सनिफाई किया गया, क्योंकि हमें वही चीज दिमाग में रहती है जो दिखाई देती है। जो चीज हम नहीं जानते हैं, देखे नहीं है, उस चीज दिमाग में आती भी नहीं है। ये लॉ है माइंडफुलनेस का भी और मेमोरी का भी। इसलिए जितना भी ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान देने के पीछे जो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है वो है रूपक अलंकार का, पर्सनिफिकेशन का, जिसको मेटाफोर भी कहते हैं। तो अर्जुन को आत्मा कहा गया और अर्जुन के रथ को, रथ की तुलना शरीर से की गई। यह शरीर है, शरीर एक रथ की तरह है, इस रथ में कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। तो कर्मेंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को घोड़े के रूप में दिखा दिया गया कि अर्जुन का रथ है शरीर, उसके उसमें घोड़े लगे हुए हैं और वो घोड़े भाग रहे हैं, मन को भगा रहे हैं। अर्जुन का मन यानी आत्मा के अंदर जो मन है वो इंद्रियों के प्रभाव से वो भाग रहा है, बेचैन है, कहीं मन उधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है, आंख कुछ और देखने को कहता है, कान कुछ और सुनने को कहता है। तो कर्मेंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के प्रभाव में आकर के मन इधर उधर भाग रहा है, इसलिए उसको घोड़े के रूप में दिखाया गया। अर्जुन का मन भटक रहा है, उसकी एकाग्रता नहीं हो पा रही है, यानी वो तीर नहीं चला पा रहा। तीर चलाना यानी कर्म करना, कर्म नहीं कर पा रहा है, उसका काम है तीर को चलाना लेकिन वो कर्म नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसकी एकाग्रता नहीं है, मन भाग रहा है। इसलिए वो अपने रथ में परमपिता परमात्मा को बुलाता है, और इसीलिए दिखाया गया है कि कृष्ण यानी परमात्मा, उनको परमात्मा के रूप में दिखाया गया है। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण, आकर्षण युक्त, यानी जो सबसे बड़ा आकर्षण युक्त है, आकर्षक है, जो सबको खींच लेता है मैग्नेट की तरह, वो है गॉड, परमात्मा। तो परमात्मा जो निराकार है उसको पर्सनिफाई किया गया श्री कृष्ण के रूप में, और श्री कृष्ण का मतलब कि अट्रैक्ट करने वाला। और जब वो आता है अर्जुन के रथ में, यानी वो शरीर में आता है, उसको गाइड करता है कि कैसे तीर चलाना है, यानी कैसे मन को एकाग्र करना है, मन किस डायरेक्शन में लेके जाना है। जब परमात्मा ये उसको समझाते हैं तब जाके उसका मन एकाग्र होता है, लेकिन वो बहुत सारा क्वेश्चन पूछता रहता है परमात्मा से। जब तक सारे प्रश्नों के उत्तर परमात्मा से नहीं मिल जाता तब तक वो कर्म नहीं करता है। तो आज के रेट में हम सभी मनुष्य अर्जुन की तरह है, जिसके अंदर इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल जवाब भरे हुए हैं मन में संदेह के कारण, शक के कारण ज्ञान ठीक से अंदर नहीं जाता है, हम ज्ञान को अर्जन नहीं करते। इसलिए परमपिता परमात्मा को ज्ञान देना पड़ता है, और ज्ञान देने की जो भाषा है और रिसीव करने की जो भाषा है वो है चित्रों की भाषा। चित्र, रंग, म्यूजिक, कला, इसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है। जब इन चीज को ऑडियो वीडियो का यूज किया जाता है तो हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल है, कोई फिल्म देखता है, फिल्म में ऑडियो है, वीडियो है, म्यूजिक है, आर्ट है, ग्राफिक्स है, तो वहां पे एकाग्रता रहती है। कहीं भी ये चारों चीजों को यूज होता है वहां पे एकाग्रता रहती है, लेकिन जहां पे इन चीजों का यूज नहीं किया जाता वहां एकाग्रता नहीं रहती है। इसलिए एकाग्रता के लिए इन चारों चीजों का यूज जरूरी है। तो माइंडफुलनेस के लिए भी हमें, इस चीज को रिकॉल करने के लिए भी हमें चित्रों की जरूरत है। अंदर ऐसे ऐसे चित्र बनाने हैं, ऐसे 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 इमेजेस की डिक्शनरी क्रिएट करनी है अपने अंदर, ताकि हम कोई भी भाव को चित्रों के माध्यम से हम दुनिया के आगे रख सकें। भावार्थ को चित्रों में रखना, यही मेमोरी टेक्निक्स है, यही मेमोरी टूल्स है, इसी को नेमोनिक्स कहते हैं। तो हमें कोई भी चीज याद करने के लिए हमें इन नेमोनिक्स के भाषाओं का यूज करना पड़ेगा, और इसको जब यूज करेंगे तब जाके हमारी मेमोरी बढ़ेगी, माइंडफुलनेस बढ़ेगा। अब मैं एक्टर हूं, अब एक्टर भी क्या है, एक एसोसिएशन है। आप अंदर सोच सकते हैं कि पूरा शरीर है, अंदर मैं एक एक्टर हूं, आज मुझे रोल मिला हुआ है, आज मुझे फादर का रोल मिला हुआ है, तो उस फादर के रोल में एक बच्चे के साथ क्या हमें एक्टिंग करना है, हाउ आई शुड बी द बेस्ट फादर, इसके बारे में सोचना है, ये संकल्प करना है, इसके बारे में इमेजिन करना है, कैसे हम बेटे से बात करेंगे, कैसे उसको हगिंग करेंगे, कैसे हम उसको काउंसिल करेंगे, कैसे हम प्यार करेंगे, कैसे हम उसको गाइड करेंगे, ऐसा ऐसा सोचना, तो ये हुआ एक्टर, एक्टिंग कॉन्शियसनेस, ताकि हमें बेस्ट शॉट देना है। तो तभी हमारा कर्म भी अच्छा होगा, क्योंकि कर्म करने के पहले सबसे पहले हमें कर्मों का चित्र यहां पर बन जाता है। जैसा चित्र यहाँ पे बनता है वैसा ही हमारा इमोशंस निकलता है, और जैसा इमोशन निकलता है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। तो एक्टिंग का कंसियसनेस में भी हमें कैसे एसोसिएट किया, अपने आपको एक्टर्स के साथ में एसोसिएट किया। आज हम हस्बैंड हैं तो आई शुड बी बेस्ट हस्बैंड, अगर वाइफ है तो आई शुड बी द बेस्ट वाइफ। तो ये रोल कंसियस, एक्टर कंसियसनेस, ये बहुत जरूरी है। तो ये भी एक एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन से हमें माइंडफुलनेस यानी मेमोरी रीगेन होगी और हमें डे टू डे लाइफ में हमें करना है। नेक्स्ट है जैसे एनर्जी कंसियसनेस। अब एनर्जी, मैं एक एनर्जी हूं, इसको भी आप एसोसिएट करें माइंडफुलनेस में, कि हमें एक कैसे हमेशा याद रहे कि मैं एनर्जी हूं, मैं एक ऊर्जा हूं इस शरीर में। तो आप अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं लाइट एनर्जी से, आई एम लाइट, मैं यहां पे एक चमकता हुआ लाइट हूं, जल रहे हूं, यहां से एनर्जी निकल रही है, ये बल्ब है, ये विंडो है, इस विंडो से रोशनी आ रही है जिससे पूरे संसार को मैं देख रहा हूं। तो ऐसी समृद्धि लाना, ये एसोसिएट करना, ये मेमोरी टेक्निक्स है, मेमोरी टूल्स है, नेमोनिक्स है, और इससे ही हमें माइंडफुलनेस होगा। इसलिए आप देखें कि गीता के ज्ञान में परमात्मा ने हमेशा तुलना किया है, हमेशा चित्रों का यूज किया है, रूपक अलंकार का यूज किया गया है, क्योंकि हम सभी चित्रों की भाषा ही समझते हैं। भावों को एक्सप्रेस करना चित्रों के माध्यम से, इसी को नेमोनिक्स कहा जाता है, और ये नेमोनिक्स ही मेमोरी टेक्निक्स है, इसी से हमारी मेमोरी बढ़ेगी। इंटेंशन, संकल्प, हमारे संकल्प भी क्या है, हमारे भाव है, हम उसको ऑब्जर्व करें। अगर भावना है, भावनाओं को कैसे हम देखेंगे, हमारे अंदर भावनाएं कैसी है, भावनाओं को देख नहीं सकते, भावनाओं को फील कर सकते हैं, तो उसको फील करना है, उसको भी एक चित्रों के रूप में फील करना है। अगर किसी से प्यार की भावना निकालनी है तो भले प्यार की भावना के लिए वो दूर है, हम उसको फिजिकली हगिंग नहीं कर सकते, लेकिन मेंटली कर सकते हैं, मेंटली हम उसको हगिंग कर सकते हैं, किस कर सकते हैं। और प्रेम, जो निस्वार्थ प्रेम है, उस प्रेम के वाइब्रेशन को हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब तक यहां पर चित्र नहीं बनता है तब तक इमोशन भी रिलीज नहीं होती है। ये भी लॉ है, इमोशंस तभी रिलीज होगा जब अंदर उसका एक इमेज बनेगा। इमेज और इमोशंस का बहुत गहरा रोल है। नॉर्मल थॉट्स से इमोशंस नहीं रिलीज होता है, और जब तक थॉट्स में इमोशन नहीं होता है तब तक इंटेंशन नहीं बनता है, संकल्प नहीं बनता है। तो हमें संकल्पों को ऑब्जर्व करना है। तो कई तरह के संकल्प, कई तरह के थॉट्स हमारे मन में आते रहते हैं जिसमें इमोशंस नहीं होते हैं, वैसे थॉट्स एक वायु के झोंके की तरह आते रहते हैं और मन को उड़ा के लेके जाते रहते हैं। तो हमें उसको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो संकल्प चल रहे हैं उस संकल्प का कोई चित्र है, चित्र है तो उसमें क्या इमोशन है। तो ऐसा बार 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 दिमाग में लाना, कंसियसनेस में लाना, ये हमें, इससे हम माइंडफुलनेस की तरफ जाएंगे, हमारी मेमोरी अच्छी होती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। नहीं तो मन में बात आई, मन उड़ के चला गया, कहीं और चला गया, फिर वहां से कहीं दूसरी बात आई, दूसरी जगह चला गया, और मन एक जगह टिक नहीं पाता है। इसलिए माइंडफुलनेस का मतलब मन को इस तरह से फूल करें कि माइंड हमारे पास रहे, भागे नहीं। उसी तरह ऑब्जर्विंग कंसियसनेस, ऑब्जर्विंग कंसियसनेस मतलब विटनेस कंसियसनेस, हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, जैसे गवाह होता है, देखता है और गवाही देता है, ऐसे ऐसे मेरे आंखों के सामने हुआ। तो आज संसार में जो भी कुछ हो रहा है हमारे सामने हो रहा है, वो परमात्मा के सामने भी हो रहा है, परमात्मा भी ऊपर से बैठ के देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड विटनेस कंसियसनेस। हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने आप को, डिटैच नहीं कर पाते। परमात्मा कहते हैं कि जैसे मैं देख रहा हूं ऊपर से वैसे तुम भी देखो, इसको बोलते हैं विटनेस कंसियसनेस। तो विटनेस कंसियसनेस में भी एकाग्रता होती है। जैसे फिल्म में हम देखते हैं, फिल्म को भी विटनेस करते हैं, कोई मैच देखते हैं उसमें भी हम विटनेस करते हैं, खेलते तो नहीं हम उसमें। तो जैसे हम खेल को देखते हैं, जैसे हम ड्रामा को देखते हैं, जैसे हम फिल्म को देखते हैं, जैसे कोई शो को देखते हैं, उसी तरह संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखना, इससे हमें एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। होता क्या, हमारी नजरें रहती है सामने लेकिन मन कहीं और होता है, यानी हम देख नहीं सकते, देखते नहीं, देखते हुए भी नहीं देखते, नजरें हैं लेकिन दिमाग में नजारा कुछ और है। तो हमें माइंडफुलनेस की तरफ जाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, हमारी मेमोरी को एम्पावर करने के लिए, माइंड को भी एम्पावर करने के लिए हमें देखने की आदत डालनी है, ऑब्जर्व करना है। कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं ऑब्जर्व करने के लिए, आपके सामने कुछ भी है उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके सामने कोई भी चित्र रखा हुआ उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके सामने कुछ भी नहीं है, आसमान है, आसमान में बादलों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बादलों के मूवमेंट्स को देख सकते हैं, कुछ भी बादल भी नहीं है तो आसमानी रंग है, आसमानी रंग से आप शांति का अनुभव भी कर सकते हैं, शांति को ऑब्जर्व कर सकते हैं, नेचर की ब्यूटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्विंग कंसियसनेस जब तक हमें डेवलप नहीं होगा तब तक हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति भी डेवलप नहीं होगी। इसलिए एकाग्रता को डेवलप करने के लिए हमें विटनेस कंसियसनेस का होना बहुत जरूरी है, और यह इजीली हम कर सकते हैं, देखने की तो आदत आएगी। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये भी एसोसिएशन है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। क्योंकि बॉडी की तरफ अट्रैक्शन तभी होता है जब हम बॉडी को देखते हैं, एक मेल फीमेल को देखता है, डिफरेंट बॉडी को देखता है, और तब वो बॉडी के प्रति अट्रैक्ट होता है। लेकिन बॉडी के अंदर वो भी एक एनर्जी है, स्टार है, मैं भी एक स्टार हूं, एक स्टार दूसरे स्टार से बात कर रहा है, बॉडी दूसरा है, कार अलग अलग है। इस कंसियसनेस से बातें करना कि हमें माइंडफुलनेस की तरफ लेके जाना है, और यही असली मेमोरी है। मेमोरी का मतलब यह नहीं कि हमने कोई चीज याद करके सुना दिया, ये याद कर लिया, ये याद यही रह जाएगी, ये सब जनरल नॉलेज है। नॉलेज इसका रियलाइजेशन ये है माइंडफुलनेस, और परमात्मा का जो इशारा है मेमोरी के लिए वो ये है। मेमोरी का जो मेन उद्देश्य है ये माइंडफुलनेस है, और हमें माइंडफुलनेस की तरफ लेके जाना है, क्योंकि आने वाले समय में सभी को इसकी जरूरत है, ऐसी मेमोरी की जरूरत है जिसमें वो अपने स्वरूप को रियलाइज कर सके कि मैं कौन हूं, मैं एक एक्टर हूं, जो चीज भी हो रहा है मैं देख रहा हूं, मैं एक एनर्जी हूं, अपने संकल्पों को रीड कर रहा हूं, और मेरे समान सब एक है, सब मेरे भाई भाई हैं, एक परमपिता परमात्मा की संतान है। ये सोचना ये माइंडफुलनेस है। तो इसमें भी हम क्या किस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, एसोसिएशन। विदाउट एसोसिएशन हमारी एकाग्रता डेवलप नहीं हो सकती है, इसलिए हमें सबसे पहले एकाग्रता डेवलप करने का सीखना है। कि एकाग्रता का मतलब कि जो चीज को भी हम देख रहे हैं उसके पूरे चीज को देखते रहें, पूरे स्वरूप को देखते रहें। हम आफ्टर इमेज एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आफ्टर इमेज एक्सरसाइज का मतलब हुआ कि कोई चित्रों को हमने देखा, कोई चित्र सामने है, ध्यान से देखा, फिर आंख बंद किया और आंख बंद करके उसको रिकॉल करना शुरू किया, उसको रिकॉल किया, इसको आफ्टर इमेज एक्सरसाइज। हमारे सामने जो भी है, कुछ भी नहीं है, आसमान है, आसमान को हमने देखा, आंख बंद किया, शांति की अनुभूति की, ये ऐसे। तो आफ्टर इमेज एक्सरसाइज से एकाग्रता कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर से नीचे तक आप देखिए क्या पहना हुआ है, उसके कपड़ों का कलर क्या है, उसके बालों का कलर क्या है, स्टाइल क्या है, उसके कान का शेप कैसा है, यानी ऑब्जर्व करना, इससे भी हमारी एकाग्रता डेवलप होती है। तो हम डे बाय डे एकाग्रता को डेवलप कर सकते हैं और इससे हमारे वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स की क्वांटिटी कम होने लगती है, क्योंकि जब हमारा दिमाग इन सब चीजों में बिजी हो जाएगा तो हमारे अंदर नकारात्मक संकल्प नेगेटिविटी आ नहीं सकते। तो हमें माइंडफुलनेस के लिए इन सब चीजों की जरूरत है और इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को नॉलेज कहते हैं। बाकी सब जनरल नॉलेज है, इस पर से भी हम नॉलेज मांगते हैं, जनरल नॉलेज नहीं मांगते। तो जनरल नॉलेज से हम आज के कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज से इस लाइफ के सिस्टम को, लाइफ स्किल्स को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े कंपटीशन पास करके बड़े बड़े ओहदे प्राप्त करने वाले भी स्ट्रेस में आकर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास लाइफ को कैसे मैनेज करना है ये स्किल्स नहीं है, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है। तो लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स के लिए हमें नॉलेज की जरूरत होती है और ये नॉलेज स्वयं परमात्मा दे रहे हैं। इसलिए डेली नॉलेज के को एसोसिएट करना, चित्रों के रूप में उसको दिमाग में देखना, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, माइंडफुलनेस बढ़ेगा और मेमोरी की शुरुआत भी ऐसे ही होती है। अब कई कहते हैं कि परमात्मा जो भी बोलते हैं वो याद नहीं रहता, क्योंकि याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम उसके भावों को सिर्फ पढ़ते हैं, उस भाव को हम देखने की कोशिश नहीं करते। जब तक हम भावों को देखेंगे नहीं, भावों को फील नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी स्मृति में जाएगा नहीं, ये लॉ है। इसलिए कोई भी चीज पढ़ लेने से, चाहे बाबा की मुरली है उसको पढ़ लेने से हमारे अंदर नहीं जाएगा। इसलिए पढ़ने से अच्छा है कि मुरली समझा, मुरली को समझना कि समझा कि नहीं समझा, मुरली पढ़ना जो क्वेश्चन होना चाहिए उस मुरली पढ़ने के क्वेश्चन को बदलकर मुरली समझने का क्वेश्चन होना चाहिए कि मुरली समझ में आई। समझ में आने का मतलब एक पिक्चर बन जाना, एक छाप अंदर चले जाना। तो इस तरह हम उसको याद कर सकते हैं। मुरली की कोई भी पॉइंट्स हो, उस हर एक पॉइंट्स को क्रिएट करने के लिए, इमेजिन करने के लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी। और जब क्रिएटिविटी डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज को आप देख सकेंगे और याद कर सकेंगे। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक मुरली को हम ले करके उस टेक्नोलॉजी, नेमोनी टेक्नोलॉजी को यूज करके आपको बताएंगे कि कैसे हम हर एक भावों को चित्रों में बदल सकते हैं और पूरे बाबा के जो महावाक्य है उसको हम अपने बुद्धि में धारण कर सकते हैं। क्योंकि बुद्धि में धारणा तभी होगी जब इमेज आएगा। जब तक इमेज नहीं बनेगा बुद्धि उसको रिजेक्ट कर देती है। जैसे आप किसी को कोई भी बात बोलो वो क्या बोलेगा, हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप उसको किसी चित्र से तुलना करके समझा दो, बोला हाँ आप समझ में आ गया। क्योंकि जब तक तुलना कहीं नहीं करते, एसोसिएट नहीं करते हैं चित्रों के माध्यम से, तब तक बुद्धि उससे ग्रहण नहीं करती है। इसलिए बुद्धि के समझने का मतलब है कि एक उसका बुद्धि में चित्र बन जाए, और जब चित्र बनती है तो छप जाता है हमारे दिमाग में, जिसको हम छाप कहते हैं, और वही मेमोरी में छाप पड़ जाती है। तभी आपको अगले एपिसोड में एक मुरली को याद करने का हम विधि बताएंगे। ओम शांति।